आप सुन रहे हैं सुनो किताब।
हेलो बच्चों, मेरा नाम अनु है और मैं दिल्ली यूनिवर्सिटी में बीए ऑनर्स पॉलिटिकल साइंस की स्टूडेंट हूँ। आज मैं आपको पढ़ाऊंगी अध्याय सरल मशीन। ये कक्षा छठी के विषय विज्ञान का 11वां अध्याय है और इस अध्याय को आज शुरू करने से पहले हम रिवाइज कर लेंगे कि हमने पिछली क्लास में इस अध्याय में क्या पढ़ा था। तो बच्चों, पिछली क्लास में हम लोगों ने अलग अलग प्रकार के उत्तोलकों के बारे में पढ़ा था, किस आधार पर हमने विभाजित किया था इन अलग अलग उत्तोलकों के, इन उत्तोलकों में आयास, आलंब और भार किस किस जगह पर मौजूद हैं, कौन कौन सी उनकी स्थिति है, इस आधार पर हमने अलग अलग उत्तोलकों को बांटा था, विभाजित किया था। सबसे पहला जो हमने पढ़ा था वो था प्रथम प्रकार के उत्तोलक, दूसरा था द्वितीय प्रकार के उत्तोलक और तीसरा था तृतीय प्रकार के उत्तोलक। और सबसे पहले हमने प्रथम प्रकार के उत्तोलक के बारे में पढ़ा था। मैंने आपको बताया था कि प्रथम प्रकार के उत्तोलक के कौन कौन से उदाहरण हैं। उदाहरण के तौर पर आप हैंडपंप को समझ सकते हैं, कैंची को समझ सकते हैं और तुला को समझ सकते हैं। ये तीनों के तीनों जो हैं प्रथम प्रकार के उत्तोलक के उदाहरण के रूप में समझे जा सकते हैं। और आप लोग यहाँ पर पेज नंबर 97 पर आ जाओ, आप चित्र देख पाओगे, हैंडपंप, कैंची और तुला का आप चित्र देख पाओगे। इसमें आप एक बात नोटिस करोगे, मैंने जो आपको पिछली क्लास में भी बताया था कि इनमें हमेशा ये जो तीनों चीजें हैं, हैंडपंप, कैंची और तुला, तीनों के तीनों क्या है, प्रथम प्रकार के उत्तोलक हैं। और जो प्रथम प्रकार के उत्तोलक होते हैं उनमें क्या होता है, उनमें हमेशा आयास, आलंब और भार जिस तरीके से मैं बोल रही हूँ उसी क्रम में होते हैं। आयास और भार के बीचों बीच आलंब होता है और इसी प्रकार से ये मौजूद होते हैं उपकरण के अंदर। जैसे प्रथम उदाहरण जो है हैंडपंप, इसमें आप लोग देख सकते हो कि इसमें जिस जगह से हैंडपंप में से पानी निकलता है वो भार के रूप में समझा जा सकता है, और जिस जगह से हैंडपंप का हैंडल जो है वो फिक्स्ड होता है हमारे हैंडपंप में, उसको आलंब के रूप में समझा जा सकता है, और वो जगह जहाँ से हम हैंडल को दबाते हैं हैंडपंप को और पानी निकालते हैं हैंडपंप में से, उस हैंडल को आयास के रूप में समझा जा सकता है क्योंकि वहीं पर बल लगाया जा रहा है, एफर्ट वहीं पर लगाई जा रही है। तो इस तरीके से हैंडपंप में आपने देखा कि हैंडपंप में आयास और भार के बीचों बीच आलंब मौजूद होता है। इसी तरीके से आप कैंची में देख सकते हैं, कैंची में वो जगह जहाँ पर आप अपनी उंगलियां फंसाते हैं कैंची चलाने के लिए, उसे आयास के रूप में समझा जा सकता है, और जिस चीज को आप काटना चाहते हैं कैंची की मदद से उसको भार के रूप में समझा जा सकता है, और आलंब वो जगह होगी जहाँ से दो कैंची के हिस्सों को जोड़ा जाता है। तो इस तरीके से आप कैंची में भी देख पा रहे हैं कि इसमें हमेशा जो होता है आयास और भार के बीच में ही आलंब मौजूद होता है। तुला में भी आप देख सकते हैं, तुला में जो तुला की एक साइड होती है उसको आयास के रूप में समझा जा सकता है और दूसरी साइड को भार के रूप में समझा जा सकता है, और बीच में जहां से तुला को पकड़ा जाता है उसे आलंब के रूप में समझा जा सकता है। तो तीनों ही जो उदाहरण है प्रथम प्रकार के उत्तोलकों के, जो ये उदाहरण है, इनमें हमेशा एक बात बैठती है, वो ये है कि आयास और भार के बीच में आलंब होता है। प्रथम प्रकार के उत्तोलक के बारे में समझने के बाद मैंने आप लोगों को एक गतिविधि करने के लिए कहा था, आपको अपना खुद का खिलौना सीसो बनाना था। ये खिलौना सीसो बनाना कैसे है, ये पेज नंबर 98 पर लिखा हुआ है। इसमें सीसो आपने देखा होगा, सीसो एक प्रकार का झूला होता है जिसमें आप लोग दो बच्चे बैठते हैं उसमें एक एक साइड पर, और कभी एक बच्चा नीचे होता है, कभी दूसरा बच्चा ऊपर होता है, फिर दूसरा नीचे हो जाता है, पहला ऊपर हो जाता है, इस तरीके से ऊपर नीचे ये सीसो होता रहता है। और ये झूला आप लोगों ने अपने पार्क में देखा होगा। तो यहाँ पर आपको क्या सिखाया था, मैंने पिछली क्लास में अपना खिलौना सीसो बनाना सिखाया था। इसके लिए आप लोगों को दो खाली जार चाहिए थे जिसमें आप लोगों ने सूखी मिट्टी भर देनी थी ताकि आपकी जो जार है वो मजबूत हो जाए, ऐसी हो जाए कि वो किसी जगह पर रखी जा सके। उसके बाद आपने क्या किया था, उसके बाद आपने साइकिल की या तो एक तानी ली थी, या फिर मैंने आपको कहा था कि आप पतली लकड़ी भी ले सकते हैं, गोल पतली बांस की लकड़ी भी आप पतली सी ले सकते हैं, और फिर आपने क्या करना था, उस लकड़ी को जार में बांध देना था, इस तरीके से बांध देना था कि वो उसमें फिक्स हो जाए। आप जार में छेद करके भी लकड़ी को डाल सकते हैं या साइकिल की तानी को डाल सकते हैं, या फिर आप उसको रस्सी की मदद से भी बांध सकते हैं। उसके बाद आपको क्या करना था, उसके बाद आपको एक लकड़ी का स्केल लेना था, और उस लकड़ी के स्केल को आपको पतली लकड़ी जो आपने जार में फंसाई हुई है उसमें बांध देना था, या फिर जो आपने साइकिल की तानी ली हुई है उसमें बांध देना था। ऐसे बांधना था कि जब आप उसको ऊपर नीचे करें तो वो आसानी से घूम सके। तानी के गोल चारों ओर ये जो स्केल आपने लगाया हुआ है लकड़ी का, ये घूमना चाहिए। तो आप लकड़ी के स्केल को साइकिल की तानी में या फिर पतली डंडी जो आपने लगाई है जार में, उसमें इस तरीके से बांधेंगे ताकि वो अच्छे से घूम सके। उसके बाद आप लोगों को दो प्लास्टिक के चम्मच लेने थे और इन दो चम्मचों को आपको लकड़ी के स्केल से बांध देना था। उसके बाद आपको क्या करना था, आपका खिलौना सीसॉ तैयार हो गया था। आप एक साइड कोई वजन रख सकते हैं, दूसरे साइड से उसे उठा सकते हैं, ऐसे ऊपर नीचे, फिर आपका ये खिलौना सीसॉ होगा जब आप इसको दोनों साइड से बारी बारी से दबाएंगे। तो इसी तरीके से आप लोगों को पता चल गया था कि खिलौना सीसॉ आप कैसे बना सकते हैं। साथ ही में मैंने आपको ये भी बताया था कि ये जो सीसॉ है ये भी एक प्रकार का प्रथम प्रकार के उत्तोलक के रूप में से समझा जा सकता है, जिसमें क्या होता है, दो जगह पर अगर आप लोग प्लेग्राउंड में गए हो, पार्क में गए हो, तो वहां पर जो सीसॉ होता है उसमें क्या होता है कि एक बच्चा जो होता है वो आयास का काम करता है, दूसरा बच्चा जो होता है वो भार का काम करता है। और वो जगह जहां से आपका सीसॉ जुड़ा हुआ होता है वहां पर उसको हम आलम के रूप में समझ सकते हैं। यहां पर भी आप इस खिलौना सीसॉ में देखो, जहां से स्केल को साइकिल की तानी से बांधा गया है वो आलम के रूप में समझा जा सकता है, और जो दो चम्मच है उनमें से एक आयास का काम करेगा और दूसरा भार का काम करेगा। तो आप लोगों को यहाँ पर समझ में आ गया था कि खिलौना सीसॉ जो है ये भी प्रथम प्रकार के उत्तोलक के रूप में समझा जा सकता है। उसके बाद आगे हम लोगों ने द्वितीय प्रकार के उत्तोलक के बारे में समझा था। इसके उदाहरण क्या क्या थे, इसके उदाहरण थे एक पहिया ठेला गाड़ी, केरी कट्टा और सरौता। ये आप लोग पेज नंबर 98 पर चित्र आप लोगों को दिए गए हैं, चित्र देख सकते हैं आप लोग। कहीं आप लोगों को इनके अलग नाम पता हो तो आप उस आधार पर उनके नाम से आप समझ सकते हैं। चित्र में आप लोग देख लो, ये उपकरण आप लोगों ने कभी ना कभी देखे ही होंगे, और हो सकता है कि आपके यहाँ इनका नाम कुछ और होगा। इसमें आप लोगों को जो नाम बताया गया है मैं उसी आधार पर आपको बता रही हूँ। तो ये जो तीनों उपकरण हैं, एक पहिया ठेला गाड़ी, केरी कट्टा और सरौता, ये तीनों के तीनों द्वितीय प्रकार के उत्तोलक के उदाहरण हैं। और इनमें खास बात क्या है, इनमें खास बात ये है कि जो भार होता है वो हमेशा आलंब और आयास के बीचों बीच होता है। आप लोग सरौता में देख सकते हो कि वो जगह जहाँ से सरौता फिक्स किया गया है, जोड़ा गया है, वो आलंब के रूप में समझा जा सकता है, और बीच में जिस चीज को काटने के लिए सरौटे के बीच में फंसाया जाता है उसे भार के रूप में समझा जा सकता है, और हैंडल को, सरौटे के हैंडल को आयास के रूप में समझा जा सकता है। इसी तरीके से केरी कट्टा में भी सेम ही बात अप्लाई हो रही है। वो जगह है जहां से केरी कट्टा लकड़ी से जुड़ा हुआ है वो आलम के रूप में समझा जा सकता है, और भार समझा जा सकता है उस चीज के रूप में जहां काटने के लिए कोई वस्तु रखी जा रही है, केरी कट्टे में फंसाई जा रही है, वो भार के रूप में समझा जा सकता है, और आयास हैंडल के रूप में समझा जा सकता है केरी कट्टे में। और एक पहिया ठेला गाड़ी में आप देखें तो वो जगह जहां से पहिया जुड़ा हुआ है हमारे एक पहिया ठेला गाड़ी से, वो आलम के रूप में समझा जा सकता है, और भार वो बीच वाली खाली जगह जिसमें आप लोग सामान भरते हैं एक पहिया ठेला गाड़ी में, और आयास वो जगह जहां से आप लोग एक पहिया ठेला गाड़ी को पकड़ते हैं, हैंडल जो है एक पहिया ठेला गाड़ी का, उसे आयास के रूप में समझा जा सकता है। तो इसी तरीके से ये तीनों उदाहरण जो है इनमें एक बात कॉमन है, और वो ये है कि हमेशा भार जो होता है वो आलंब और आयास के बीचों बीच होता है द्वितीय प्रकार के उत्तोलकों में। उसके बाद हमने पढ़ा था तृतीय प्रकार के उत्तोलक। तो जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया था कि पोजीशन जो होती है, स्थिति जो होती है, आलंब, भार और आयास की, ये तीनों प्रकार के उत्तोलकों में भिन्न भिन्न होती है, और इसी आधार पर इनको विभाजित किया जाता है। और तृतीय प्रकार के उत्तोलक में क्या अंतर था, इसमें अंतर ये था कि तृतीय प्रकार के उत्तोलकों में हमेशा आयास जो होता है वो भार और आलंब के बीच में होता है। और यहाँ पर उदाहरण क्या क्या समझाए थे मैंने, चिमटी और हाथ से अगर आप जब भार थामते हैं, वजन उठाते हैं, तो ये जो होते हैं दोनों उदाहरण, ये तृतीय प्रकार के उत्तोलक के रूप में समझे जा सकते हैं। चिमटी में आप लोग देखो, चिमटी में जिस जगह से चिमटी जुड़ी हुई होती है उस जगह को हम आलंब के रूप में समझ सकते हैं, और वो जगह जहां से हम चिमटी की मदद से कोई चीज उठाने की कोशिश करते हैं वहां पर उसे भार के रूप में समझा जा सकता है, और भार और आलंब के बीचों बीच जो चिमटी का भाग होता है वो आयास के रूप में समझा जा सकता है। और जब हम अपने हाथ से कोई भार उठाते हैं तो उस वक्त जो हमारी एल्बो होती है, कोहनी जो होती है, वो आलंब के रूप में समझी जा सकती है। हमारी हथेली जिसके ऊपर हम वजन रख रहे हैं वो भार के रूप में समझी जा सकती है, और हमारी हथेली और कोहनी के बीच का जो भाग होता है वो आयास के रूप में समझा जा सकता है। यहाँ पर आप लोग चित्र भी देख सकते हैं, पेज नंबर 99 पर चित्र 11.8, चिमटी और हाथ से भार थामना, दोनों ही आप लोगों को चित्र दिखाया गया है। और इसमें आप बहुत आसानी से समझ सकते हैं कि जो आयास है वो भार और आलंब के बीच में है, और ये जो है ये तृतीय प्रकार के उत्तोलक हैं। उसके बाद मैंने आप लोगों को बोला था कि ये चार्ट जो आपको दिया गया है पेज नंबर 99 पर, इसको भी आप लोग बहुत अच्छे से समझ सकते हैं। ये सारी की सारी बात को बहुत आसान कर देता है, और केवल ये चार्ट ही आप लोग देख लेंगे तो आपको सारी बात समझ में आ जाएगी और आपको याद भी हो जाएगा कि उत्तोलक जो होते हैं वो तीन प्रकार के होते हैं, प्रथम प्रकार का उत्तोलक, द्वितीय प्रकार का उत्तोलक और तृतीय प्रकार का उत्तोलक। प्रथम प्रकार के उत्तोलक में आलंब जो होता है वो भार और आयास के बीच में होता है, द्वितीय प्रकार के उत्तोलक में भार जो होता है वो आलंब और आयास के बीचों बीच होता है, और तृतीय प्रकार के उत्तोलक में भार जो होता है उसके और आलंब के बीचों बीच आयास होता है, मतलब कि आलंब और भार के बीचों बीच आयास होता है। और ये तीन प्रकार के अलग अलग उत्तोलक होते हैं, इनके उदाहरण भी नीचे दिए गए हैं। प्रथम प्रकार के उत्तोलक को आप लोग नेल कटर के उदाहरण से समझ सकते हैं, द्वितीय प्रकार के उत्तोलक में आप लोग केरी कट्टे के उदाहरण से समझ सकते हैं, और तृतीय प्रकार के उत्तोलक में आप लोग चिमटी का उदाहरण ले सकते हैं और समझ सकते हैं। तो यहाँ तक हम लोगों ने पिछली क्लास में बात की थी, अब हम आज की क्लास को शुरू करेंगे। और आज की क्लास में हम लोग सबसे पहले घिरनी के बारे में बात करेंगे। घिरनी, जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया है, आप लोगों ने कुएं में कभी जाकर के कुएं के पास देखा होगा कि वहां पर क्या होता है, घिरनी लगी होती है जिसकी मदद से आप लोग बाल्टी से पानी कुएं से निकाल पाते हैं। और आप लोगों ने देखा होगा कि ये जो घिरनी होती है ये गोल पहिए जैसी होती है, छोटे से लोहे के पहिए जैसे होती है, और इस घिरनी के बीचों बीच छेद होता है, और उस छेद से बीच में तीलियां सी होती हैं, मोटी मोटी तीलियां होती हैं जिनकी संख्या 4 या 6 हो सकती है, और इनको हम लोग क्या कहते हैं, बाजू कह सकते हैं। लेकिन यहाँ पर आप लोग, जैसे आप लोगों ने साइकिल का टायर देखा होगा, उसमें क्या होता है कि बीच में एक धुरी होती है और बाहर टायर होता है, और बीच में धुरी और टायर के बीचों बीच पतली पतली तीलियां लगी होती हैं साइकिल की। तो इसी तरीके से जो हमारा घिरनी होता है इसमें भी बीच में तीलियां लगी होती हैं, लेकिन वो उतनी पतली नहीं होती जितनी साइकिल में पतली होती हैं, थोड़ी मोटी होती हैं। घिरनी की जो तीलियां होती हैं वो थोड़ी मोटी होती हैं, संख्या भी उनकी कम होती है, 4 या 6 ही होती हैं वो घिरनी में, और साइकिल के पहिए में वो बहुत सारी होती हैं। और हम लोग घिरनी में जब उन तीलियों के बारे में बात कर रहे होते हैं तो उन्हें हम बाजू कहते हैं। और ये जो घिरनी बनी होती है ये ढलवा लोहे की बनी होती है, एक प्रकार का लोहा होता है ये। तो ये तो केवल घिरनी वाले पार्ट की बात हो गई। अब जब घिरनी को लगाया जाता है, मान लीजिए कुएं में लगाया जा रहा है किसी घिरनी को, तो उसको ऐसे लगाया जाता है कि जो आपकी घिरनी है उसके बीच में जो छेद है उससे एक रॉड पास होती है, पतली सी छोटी सी रॉड पास होती है, और वो ऊपर उस रॉड की मदद से घिरनी को लटका दिया जाता है, और घिरनी जो होती है उस रॉड के चारों ओर घूमती है, गोल गोल घूमती है, और उसी के गोल गोल घूमने की वजह से आप लोग जब रस्सी उसके ऊपर लटका देते हैं तो पानी बाल्टी में भर के आप घिरनी का इस्तेमाल करके कुएं से निकाल पाते हैं। तो वो पतला छोटा रॉड जिसमें घिरनी के बीच का छेद के मदद से आप लोग घिरनी को लगाते हैं वो धुरी का काम करता है, जिसके चारों ओर आपकी घिरनी आसानी से घूम पाती है। अब आ जाओ आप लोग पेज नंबर 100 पर, और यहाँ पर आप देखो घिरनी का आप लोगों को चित्र दिखाया गया है। यहाँ पर आप लोग देख सकते हो कि घिरनी जो है वो गोल गोल है, उसके बीच में छेद है और उसमें एक पतली रॉड पास हो रही है, और उस रॉड को ऐसे लगाया गया है कि घिरनी जो है वो ऊपर लटकी हुई रहती है, हमेशा घिरनी ऊपर लटकी हुई अवस्था में रहती है, और उस रॉड के चारों ओर, धुरी के चारों ओर ये घिरनी घूमती है। अब मैं आप लोगों को बताऊंगी कि घिरनी के इस्तेमाल से हम लोग का काम आसान कैसे होता है। तो देखो बच्चों क्या होता है कि अगर आप कभी किसी कुएं से पानी निकालने की कोशिश कर रहे हैं, बाल्टी से, बाल्टी की इस्तेमाल से आप लोग पानी निकालने की कोशिश करेंगे कुएं से, तो अगर आप सीधे ही बिना घिरनी के इस्तेमाल के रस्सी डाल देंगे, बाल्टी डाल देंगे और पानी निकालने की कोशिश करेंगे तो आप लोगों को बहुत ज़्यादा मेहनत लगानी पड़ेगी, बहुत ज्यादा आप लोगों को बल लगाना पड़ेगा आपकी बाल्टी को ऊपर खींचने के लिए। क्योंकि इस स्थिति में क्या होता है, घिरनी के ना इस्तेमाल की स्थिति में क्या होता है कि जो बाल्टी है उस पर कुछ ना कुछ गुरुत्वाकर्षण बल लग रहा होता है। गुरुत्वाकर्षण बल वो बल होता है जो धरती अपने आसपास की सभी चीजों पर लगाती है। आप लोगों को पता है कि कभी भी जब पेड़ से सेब टूटता है तो वो धरती पर गिरता है, कभी भी वो आसमान में नहीं जाता। वो ऐसा इसलिए होता है क्योंकि धरती जो होती है हर एक चीज को अपनी ओर खींचती है, आकर्षित करती है। इसी तरीके से जब बाल्टी से आप लोग पानी भर के खींच रहे होते हैं तो बाल्टी को धरती अपनी ओर खींच रही होती है, और जितना ज्यादा वजन किसी भी वस्तु का होता है उतना ही ज्यादा उसके ऊपर गुरुत्वाकर्षण बल लग रहा होता है। तो आपकी जो बाल्टी होती है उसमें पानी भरा होता है तो उसका वजन काफी ज्यादा होता है और इसीलिए उसके ऊपर गुरुत्वाकर्षण बल भी काफी ज्यादा लगता है। तो जब आप लोग बिना घिरनी के इस्तेमाल के बाल्टी को सीधे ही रस्सी से खींच रहे होते हैं उस वक्त क्या होता है, उस वक्त बाल्टी के ऊपर गुरुत्वाकर्षण बल ज्यादा लग रहा होता है। और इस स्थिति में जिधर गुरुत्वाकर्षण बल लग रहा है, गुरुत्वाकर्षण बल जो होता है वो हमेशा वस्तु के नीचे की ओर लगता है। मान लीजिए आपकी जो बाल्टी है वो लटकी हुई है तो उससे नीचे की ओर धरती के तरफ बल लगता है और आप उसे खींच रहे होंगे गुरुत्वाकर्षण के बल के बिल्कुल विपरीत आप लोग खींच रहे होंगे, तो इसीलिए आप लोगों को ज्यादा मेहनत लगानी पड़ती है। लेकिन जब आप लोग घिरनी का इस्तेमाल करके और फिर कुएं से पानी निकालते हैं तो उस वक्त क्या होता है कि जो आपके बल लगाने की दिशा है वो बदल जाती है और इसी वजह से आप लोगों को कम बल लगाना पड़ता है और आप लोग आसानी से बाल्टी को खींच पाते हैं। आप लोग जब रस्सी को डायरेक्टली खींच रहे होते हैं बिना पुली लगाए, बिना घिरनी लगाए, जब आप लोग रस्सी खींच रहे होते हैं, बाल्टी वाली रस्सी जब आप खींच रहे होते हैं तो उसमें आप लोगों को बल ऊपर की ओर खींच के, रस्सी को आप ऊपर की ओर खींच रहे होते हैं। लेकिन जब घिरनी लग जाती है तो घिरनी लगने के बाद आप रस्सी को नीचे की ओर खींचते हैं। तो यहाँ पर पुली के इस्तेमाल से, घिरनी के इस्तेमाल से जो बल लगाने की दिशा है वो बदल जाती है और जिसकी वजह से पुली की रस्सी को खींचना आसान हो जाता है। तो आप लोगों को समझ में आ गया कि घिरनी का प्रयोग जो होता है वो हमारे काम को किस तरीके से आसान कर देता है। और घिरनी का प्रयोग बड़े बड़े कारखानों में, क्रेनों में, मकान में भारी वस्तुओं को उठाने के लिए, ऊपर चढ़ाने के लिए, इन सभी चीजों में इनका इस्तेमाल किया जाता है। साथ ही में मंच से पर्दा हटाने के लिए भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। उसके बाद आगे हम लोगों को पढ़ना है पच्चर या फिर वेज के बारे में। तो बच्चों, आप लोगों ने कभी छेनी देखी होगी या फिर आपने कुल्हाड़ी देखी होगी। तो जब आप लोग छेनी या फिर कुल्हाड़ी का आकार देखते हैं, जब उसको ध्यान से देखते हैं तो आप लोगों को दिखाई देता है कि उसकी आकार किस तरीके की होती है। छेनी या फिर कुल्हाड़ी में क्या होता है कि उनका जो सामने का भाग होता है वो काफी ज्यादा पैना होता है और पीछे का भाग जो होता है वो काफी मोटा होता है। इस प्रकार के आकार को ही हम वेज आकृति कहते हैं या फिर पच्चर आकृति कहते हैं, जिसमें जो आपका उपकरण है उसके आगे का भाग पैना होता है और पीछे का भाग मोटा होता है। और इसका इस्तेमाल करके हम लोग बहुत आसानी से लकड़ी को काट पाते हैं। लकड़ी में क्योंकि आगे से पैने होते हैं इसलिए आसानी से घुस जाते हैं और काटने का, छटाई करने का काम ये बहुत आसानी से कर देते हैं, इसीलिए इसको भी एक सरल मशीन के रूप में समझा जा सकता है। यहाँ पर आप लोग पेज नंबर 100 पर देख सकते हो कि कुल्हाड़ी कैसा दिखता है और एक छेनी कैसी दिखती है। चित्र 11.11 में आप लोग वेज की आकृतियां देख सकते हैं। उसके बाद अगला है पेंच। पेंच का भी आप लोग को यहाँ पर चित्र दिया गया है पेज नंबर 101 पर। यहाँ पर आप लोग देख सकते हो चित्र 11.12, इसमें आप लोगों को पेंच किस तरीके का दिखता है वो दिखाया गया है। और पेंच कहाँ यूज होता है, पेंच यूज होता है दो भागों को कसने के लिए, जोड़ने के लिए। आप लोगों ने मशीनों में देखा होगा, मशीनों में दो अलग अलग भागों को जोड़ने के लिए पेंच का इस्तेमाल किया जाता है, कसने के लिए पेंच का इस्तेमाल किया जाता है। कील जैसी दिखती है ये, लेकिन अलग प्रकार की कील होती है जिसमें चूड़ियां बनी होती हैं और इसे आसानी से कसा जा सकता है। कील जो होती है उसमें चूड़ियां नहीं बनी हुई होती हैं, वो प्लेन होता है और नुकीला होता है। लेकिन पेंच जो होता है ये थोड़ा सा अलग प्रकार का होता है। इसे जब आप ध्यान से देखेंगे तो इसमें आप लोगों को बीचों बीच जो ये लंबी सी भाग होती है, एक तो इसमें आप लोग देख पा रहे होंगे कि एक इसका शीर्ष होता है जिसमें आप लोग किसी भी पेंचकस का इस्तेमाल करके इसे घुमाते हैं और कसते हैं इसको किसी भी उपकरण में। उसके बाद दूसरा, नीचे पतली सी छड़ होती है जिसमें चूड़ियां कटी होती हैं। इसमें आप लोग आकार देख पा रहे होंगे, इसमें गोल गोल सी चूड़ियां की डिजाइन आप लोगों को दिखाई देती है, और बिल्कुल एंड में होता है, बिल्कुल लास्ट में होता है, पतला नुकीला सा होता है ये हमारा पेंच, और उसे हम नोक कहते हैं। तो इसी तरीके से तीन पार्ट्स आप लोग पेंच में देख पा रहे हैं। एक उसका शीर्ष होता है जिसमें पेंचकस को लगा करके उसको फंसा करके आप पेंच को घुमा सकते हैं। उसके बाद चूड़ियां होती हैं और बिल्कुल लास्ट में नोक होता है। और ये जो पेंच है इसमें चूड़ियां इस तरीके से काटी जाती हैं ताकि जब आप लोग पेंचकस को सुई, आपकी जो घड़ी होती है उस घड़ी में सुई की घूमने की जो दिशा होती है उस दिशा में अगर आप पेंच को घुमाएंगे तो आपके जो पेंच है वो कस जाएगा, लेकिन अगर जो घड़ी है उसकी सुई के घूमने की विपरीत दिशा में आप पेंच को घुमाएंगे तो आपका पेंच जो है वो खुल जाएगा। आप लोगों ने देखा ही होगा कि पेंच को एक दिशा में घुमाने से वो कसती है, दूसरी दिशा में घुमाने से खुल जाती है। तो जिस दिशा में घुमाने से आपकी पेंच कसती है वो दिशा होती है, आप लोग देखेंगे वो दिशा बिल्कुल सेम होती है जिस दिशा में आपकी घड़ी में सुइयां घूम रही होती है, गोल गोल घूम रही होती हैं, और जब खोलते हैं पेंच को तो वो दिशा वही होती है जिस दिशा में विपरीत दिशा सुई जो होती है आपके घड़ी की जो सुई होती है उसके घूमने की विपरीत दिशा में अगर आप पेंच को घुमाएंगे तो आपका पेंच खुल जाएगा। तो यहाँ पर आप लोगों को पेंच के बारे में समझ में आ गया। उसके बाद आगे थोड़ी सी बात हम लोगों को करनी है कि आपको पता है कि मशीन का इस्तेमाल हम लोग करते हैं उससे हम लोग का काम बहुत आसान हो जाता है, बहुत जल्दी हम कर पाते हैं, सरलता से कर पाते हैं। लेकिन आप लोगों को पता है कि अगर हम मशीन को ज़्यादा दिन तक यूज़ करना चाहते हैं तो हमें उसका रखरखाव भी करना होता है। अगर उसका रखरखाव ना किया जाए तो वो जल्दी ख़राब हो जाते हैं। फैक्ट्रियों में या फिर हमारे घरों में भी जो मशीन होते हैं अगर उनका ध्यान ना रखा जाए तो वो जल्दी से ख़राब हो जाते हैं। रखरखाव करने के तरीके अलग अलग हो सकते हैं अलग अलग चीज़ों के। जैसे अगर हम बात करें आपके घर की सिलाई मशीन के बारे में तो उसमें ऑयलिंग करने की ज़रूरत होती है, उसमें तेल लगाने की ज़रूरत होती है, साफ़ सफाई की ज़रूरत होती है। रेगुलरली समय समय पर आप लोगों को आपके मशीन में तेल डालना होता है क्योंकि उसमें अलग अलग औजार लगे होते हैं जो औजार काम करते हैं तभी जब उनमें बीच में कुछ भी गंदगी ना फंसी हो या फिर उसमें अच्छे से जब तेल होता है तो चिकनाहट होती है तो आपका मशीन बहुत अच्छे से काम करता है। इसी तरीके से अलग अलग मशीन्स जो होती हैं वो लोहे की बनी होती हैं तो उसमें भी आप लोग अलग अलग उसका रखरखाव कर सकते हैं, उसकी पेंटिंग करनी पड़ती है। जैसे कूलर आपके घरों में जो होता है उसके बाहर से आप लोगों को उसकी पेंटिंग कर देनी चाहिए और अंदर उसके पानी जब यूज़ ना हो रहा हो कूलर तो उसके अंदर का पानी निकाल देना चाहिए। पंखा वगैरह जो होता है ये भी आपके अलग अलग मशीन से इनकी साफ़ सफाई करनी चाहिए। इसी तरीके से अलग अलग जितनी भी मशीन्स होती हैं उनका रखरखाव करने का तरीका अलग होता है। जब आप लोग ये मशीन खरीद के लाते हैं तो उसके साथ में आप लोग को लिखा हुआ मिलता है कि आपको उसकी रखरखाव कैसे करनी चाहिए। आपके घर में जो पानी का मोटर होता है उसमें भी लिखा होता है कि आप लोगों को उसमें तेल रेगुलरली डालते रहना चाहिए, आपको उसको ऐसी जगह पर रखना चाहिए जहाँ पर बहुत ज़्यादा पानी उसमें ना गिरे। अगर उसके ऊपर ज़्यादा पानी गिर जाएगा तो आपका मोटर ख़राब हो सकता है, और आपको ऐसा नहीं करना चाहिए कि मोटर आप एक महीने बाद यूज़ कर रहे हैं चाहे एक हफ्ते बाद यूज़ कर रहे हैं, आपको उसको रेगुलरली यूज़ करना पड़ेगा अगर आप लोग उस मोटर को ख़रीद करके लाए हैं। तो इस तरीके से अलग अलग मशीनों को यूज़ करने के अलग अलग तरीके होते हैं और उनके रखरखाव के भी अलग अलग तरीके होते हैं। और इसी के साथ में आपका अध्याय खत्म हो गया है। अब हम लोग प्रश्न उत्तर पर चर्चा करेंगे। पहले प्रकार के जो प्रश्न है उसमें आपको सही विकल्प का चयन करना है। पहला प्रश्न है कि चिमटे में आयास, आलंब व भार का क्रम कैसा होता है। तो चिमटे में हमेशा आयास जो होता है वो भार और आलंब के बीचों बीच होता है, तो स ऑप्शन सही है, उसे टिक कर देंगे आप लोग। अगला प्रश्न है कि मशीन की सहायता से कार्य करने में आप लोगों को सरलता व सुविधा होती है, तो इसमें भी स ऑप्शन सही है, उसे टिक कर देंगे आप लोग। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से जटिल मशीन कौन सी है। तो पेंच, वेज और पहिया तीनों सरल मशीन है, सिलाई मशीन जो होती है वो एक जटिल मशीन है, तो इसमें भी 100 ऑप्शन सही है, इसे आप टिक कर देंगे। अगला प्रश्न है भारी वस्तु को खिसकाने के लिए पहिए लगाए जाते हैं और पहिए लगाने से क्या हो जाता है, घर्षण बल जो होता है वो कम हो जाता है, तो इसमें ब ऑप्शन जो है उसे टिक कर देंगे, वो सही है। अगले प्रकार के जो प्रश्न है उसमें आपको रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी है। पहला प्रश्न है पेंच को क्या करने के लिए घड़ी की सुइयों की घूमने की दिशा में घुमाया जाता है। तो पेंच को कसने के लिए घड़ी की सुइयों की घूमने की दिशा में उसको घुमाया जाता है। अगला प्रश्न है धुरी व पहिए के प्रयोग से क्या होता है, बल जो होता है वो किस तरीके से लगता है, कौन सा बल कम लगता है, धुरी व पहिए के प्रयोग से कौन सा बल कम लगता है ये आपको बताना है। तो धुरी व पहिए के प्रयोग से घर्षण बल कम लगता है। उसके बाद अगला प्रश्न है, तीसरा प्रश्न, मशीनों को लंबी आयु प्रदान करने व क्षमता बढ़ाने के लिए उनका उचित क्या करना आवश्यक है, उनका उचित रखरखाव करना आवश्यक है। अगला प्रश्न है, चौथा प्रश्न, घिरनी के प्रयोग से बल की क्या बदल जाती है, तो घिरनी के प्रयोग से बल की दिशा बदल जाती है। अगले प्रकार के प्रश्न है लघु उत्तरात्मक प्रश्न। पहला प्रश्न है, घिरनी का नामांकित चित्र बनाइए और उसकी बनावट का वर्णन कीजिए। तो यहाँ पर आप लोग चित्र जो है बना सकते हैं, पेज नंबर 99 पर आप लोगों को चित्र दिया गया है, 100 पर दिया गया है, पेज नंबर 100 पर आप लोगों को घिरनी का चित्र दिया गया है और वर्णन किया गया है उसके बनावट के बारे में पेज नंबर 99 पर। तो यहाँ पर आप लोग चित्र जो है घिरनी का पेज नंबर 100 से देख करके बना सकते हैं और वर्णन आप लोग ऐसे लिख सकते हैं कि घिरनी जो होती है वो एक सरल मशीन होती है और घिरनी एक छोटा सा पहिया होता है, गोल पहिया होता है जो कि ढलावा लोहे से बना हुआ होता है और घिरनी के बीचों बीच का भाग जो होता है वो एक होल होता है, छेद होता है जो अपने बाहर के पहिए से जुड़ा हुआ होता है बाजुओं के द्वारा, और बाजुएं जो है वो चार या छह होती हैं, जिस तरीके से साइकिल में होता है पतली पतली तीलियां जो होती हैं वो बाहर के पहिए को बीच की धुरी से जोड़ती हैं, वो तीलियां जो हैं इसी तरीके से हमारे घिरनी में भी होती हैं, लेकिन संख्या कम होती है और आकार भी थोड़ा मोटा होता है, चार या छह ही होती हैं और आकार मोटा होता है। उसके बाद मैंने आपको ये भी बताया हुआ है कि जो घिरनी होती है उसके बीच में जो छेद होता है उसमें एक छोटी पतली रॉड पास होती है और उस रॉड के चारों ओर ही हमारी घिरनी घूमती है। जब उस रॉड की मदद से हम लोग घिरनी को लटका देते हैं कहीं पर, और हमेशा घिरनी जो होती है उसको कहीं पर लटकाया ही जाता है और फिक्स कर दिया जाता है, और उसी के चारों ओर, रॉड के चारों ओर ये आसानी से घूमती है और वो रॉड धुरी का काम करती है। तो इसी तरीके से यहाँ पर आप लोग लिख सकते हैं। उसके बाद अगला प्रश्न है कि उत्तोलक के सिद्धांत का सूत्र लिखिए। यहाँ पर आप लोगों को पूछा गया है कि जो फॉर्मूला मैंने आप लोगों को बताया था जब मैंने आप लोगों को उत्तोलक के बारे में पढ़ाना शुरू किया था सबसे स्टार्टिंग में, उसी फॉर्मूला को यहाँ पर आपको लिखना है। जो आप यहाँ पर आ जाओ पेज नंबर 97 पर, यहाँ पर आप देखो आपको एक फॉर्मूला दिया गया है, भार गुणा होता है जब भार भुजा के, तो उससे जो रिजल्ट आता है वो बराबर होता है आयास और आयास भुजा के गुणनफल के। यही वाला फॉर्मूला आप लोगों को लिखना है और इसी को हम लोग क्या कहते हैं, सूत्र कहते हैं, यानी कि फॉर्मूला कहते हैं उत्तोलक सिद्धांत का, यही फॉर्मूला होता है यानी कि सूत्र होता है। उसके बाद अगला प्रश्न है कि मशीन किसे कहते हैं, यह कितने प्रकार के होते हैं। तो मैंने आप लोगों को अध्याय की शुरुआत में ही बताया था कि मशीन वो उपकरण जिनका इस्तेमाल हम करते हैं अपने काम को जल्दी करने के लिए और सुविधापूर्वक करने के लिए, उन सभी उपकरणों को हम मशीन कहते हैं। और ये दो प्रकार की होती हैं, एक सरल प्रकार की होती है, दूसरी जटिल प्रकार की होती है। सरल प्रकार की जो मशीन होती है उसमें केवल हमें अपनी भुजा बल का इस्तेमाल करना होता है, अपने हाथ से मेहनत करनी होती है, और जो जटिल प्रकार के मशीन होते हैं उसमें अपने हाथ से मेहनत के अलावा आपको अलग अलग उसमें पार्ट्स लगे हुए होते हैं, जैसे या तो विद्युत का इस्तेमाल करना पड़ सकता है, बिजली का इस्तेमाल करना पड़ सकता है, या फिर जैसे साइकिल में चेन लगा हुआ होता है, पेडल को तो आप लोग अपने पैरों से घुमाते ही हो, लेकिन अगर उसमें चेन नहीं लगी हुई होगी आपकी साइकिल में तो आपकी साइकिल नहीं घूमेगी। तो जो जटिल प्रकार के मशीन होते हैं उसमें भुजा बल के अतिरिक्त भी अलग अलग चीज़ों का प्रयोग किया जाता है, इसीलिए वो जटिल कहलाते हैं। उसके बाद अगला प्रश्न है, चौथा प्रश्न, पेच व वेज भी सरल मशीनें हैं, इसको समझाइए। तो पेच और वेज जो है ये मशीन है, पहली बात तो ये मशीन है क्योंकि हम इनके इस्तेमाल से अपना काम आसानी से कर पाते हैं। वेज जो होता है वो हम लोग या तो हमें छटाई करनी होती है छेनी का इस्तेमाल करके, पत्थर वगैरह की छटाई करनी होती है तो उस रूप में हम इस्तेमाल करते हैं, या फिर कुल्हाड़ी जो होती है लकड़ी को काटने के लिए हम कुल्हाड़ी का यूज़ करते हैं। तो क्योंकि कुल्हाड़ी और छेनी जो है इसके आगे का भाग नुकीला होता है, पैना होता है, इसीलिए आसानी से ये लकड़ी को काट देते हैं या फिर पत्थर को काट देते हैं तो हमारा काम आसान हो जाता है। अगर हम लोग हथौड़ी से काटते रहेंगे तो हमें बहुत ज़्यादा देर लग सकती है, लेकिन हम लोग हथौड़ी का इस्तेमाल बिना किए उसके बजाय हम लोग छेनी का उसमें और भी प्रयोग करें, छेनी और हथौड़ी दोनों का मिला के प्रयोग करेंगे तो आसानी से हम पत्थर को काट सकते हैं, और लकड़ी जो है उसको काटने के लिए भी हम लोग एक कुल्हाड़ी का इस्तेमाल कर सकते हैं, और कुल्हाड़ी जो है आगे से पैनी है इसलिए वो आसानी से लकड़ी को काट सकती है। तो क्योंकि वो हमारा काम सरलता से करने में हमारी मदद कर रही है इसलिए ये मशीन है। और जो पेंच होता है वो दो पार्ट्स को, किसी भी मशीन के औजार के दो हिस्सों को जोड़ने में इस्तेमाल किया जाता है, इसीलिए पेंच जो है वो भी एक प्रकार का मशीन है। अब ये सरल मशीन है, ये क्यों है ये आपको समझना है, क्योंकि इनके इस्तेमाल के लिए ना आपको अलग से बिजली चाहिए ना आपको कुछ और चाहिए। इनका प्रयोग करने के लिए आपको केवल और केवल अपनी भुजा बल का ही इस्तेमाल करना होता है, अपने हाथों से ही आप इसको प्रयोग करते हैं और अपनी भुजा बल के अलावा आपको कुछ और चीज इस्तेमाल नहीं करनी होती है, इसीलिए ये एक प्रकार के सरल मशीन होते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित उपकरणों को प्रथम द्वितीय और तृतीय प्रकार के उत्तोलकों में वर्गीकृत कीजिए। आप लोग को अलग अलग उदाहरण दिए गए हैं और आपको बताना है कि इनमें से कौन से प्रथम प्रकार के उत्तोलक हैं, कौन से द्वितीय प्रकार के उत्तोलक हैं और कौन से तृतीय प्रकार के उत्तोलक हैं। तो ये सारे उदाहरण जो हैं ये आपके अध्याय में ही हैं, तो आप लोगों को दिक्कत तो नहीं आएगी, लेकिन फिर भी मैं आपसे डिस्कस कर लेती हूँ। चिमटा और हाथ से भार थामना, ये दोनों के दोनों जो हैं ये तृतीय प्रकार के उत्तोलक के उदाहरण हैं। हैंडपंप और कैंची और तुला, ये प्रथम प्रकार के उत्तोलक के उदाहरण हैं। सरोटा और एक पहिया ठेला गाड़ी और संडासी, ये जो हैं ये द्वितीय प्रकार के उत्तोलक हैं। और सब्बल जो है, सब्बल भी प्रथम प्रकार का उत्तोलक है। तो इस तरीके से आप लोग इस प्रश्न का उत्तर लिख सकते हैं। उसके बाद अगले प्रश्न जो है वो दीर्घ उत्तरात्मक प्रश्न है। पहला प्रश्न है, दो उपकरणों द्वारा समझाइए कि मशीनों की सहायता से कार्य सरलता व सुगमता से किया जा सकता है। तो आप लोग किसी भी दो उपकरण का उदाहरण लिख सकते हैं। जैसे आप लोग यहाँ पर उत्तोलक के बारे में लिख सकते हैं कि आप लोग किसी भारी पत्थर को उठाना चाहें, डायरेक्टली आप उठाने जाएंगे तो आपसे वो नहीं उठेगा, बहुत भारी होगा तो वो आपसे नहीं उठेगा। लेकिन एक सबल का इस्तेमाल करके, एक बड़े से लंबे रॉड जैसा होता है सबल, इसका इस्तेमाल करके और बीच में कोई पत्थर लगा करके सबल को टिकाने के लिए आप लोग उस पत्थर को, भारी पत्थर को इजीली उठा सकते हैं, आसानी से उठा सकते हैं। क्योंकि इसमें क्या होगा कि आपको वजन जो होता है वो ज्यादा होने के बावजूद भी आपको एफर्ट कम लगा कर भी आप उस भारी वजन को उठा सकते हैं। अगर आप लोग आलंब और भार के बीच की दूरी कम रखेंगे तो आप लोग कम जान लगाकर, कम बल लगाकर भी उस भारी वजन को आसानी से उठा सकते हैं। तो सबल का इस्तेमाल करके आप लोगों को आसानी से काम करना आपको हो पाता है, पॉसिबल, तो आप लोग इसका उदाहरण लिख सकते हैं। दूसरा आप लोग उदाहरण लिख सकते हैं इंक्लाइन प्लेन्स का, जो नत समतल होते हैं उसका उदाहरण आप लोग लिख सकते हैं कि नत समतल का प्रयोग करके आप लोग किसी भारी वस्तु को आसानी से ट्रक में चढ़ा सकते हैं। जैसे मैंने आप लोगों को बताया था कि अगर आप लोग को एक भारी कनस्तर चढ़ाना है किसी ट्रक में, तो अगर आप उसे डायरेक्टली चढ़ाएंगे तो बहुत भारी होगा तो वो आपसे उठेगा भी नहीं। लेकिन अगर आप लोग किसी इंक्लाइन का इस्तेमाल करेंगे, किसी नत समतल का इस्तेमाल करेंगे, तो उसके ऊपर लुढ़का लुढ़का के आप लोग उस भारी कनस्तर को ले जा सकते हैं और ट्रक में पहुंचा सकते हैं। तो इंक्लाइन प्लेन का इस्तेमाल करके, नत समतल का इस्तेमाल करके भी आपका काम आसान हो जाता है। उसके बाद आप लोग पुली का भी यहाँ पर उदाहरण लिख सकते हैं। पुली में देखो, आप लोग कुएं से डायरेक्टली अगर पानी निकालने की कोशिश करोगे तो आप लोगों को बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है, लेकिन उसी में पुली लग जाता है, यानी कि घिरनी लग जाती है, तो आप लोगों का काम जो होता है बहुत ईजी हो जाता है, बहुत आसानी से आप लोग उसमें से पानी निकाल पाते हो कुएं में से। तो इन तीनों में से कोई भी दो उदाहरण आप लोगों को लिख देने हैं। उसके बाद दूसरा प्रश्न है, उत्तोलक क्या है, इनके विभिन्न प्रकारों में उदाहरणों की सहायता से अंतर स्पष्ट कीजिए। तो यहाँ पर आप लोगों को लिखना है कि उत्तोलक जो है, उत्तोलक एक सरल मशीन है और इसमें तीन पार्ट्स होते हैं। जो हमारा उत्तोलक होता है उसमें तीन पार्ट्स होते हैं। एक पार्ट जो होता है वो भार के रूप में समझा जाता है, दूसरा जो होता है वो आलंब के रूप में समझा जाता है, और तीसरा जो होता है वो आयास के रूप में समझा जाता है। और तीन प्रकार के जो उत्तोलक होते हैं, ये इनको क्यों विभाजित किया जाता है, इनको इसलिए विभाजित किया जाता है कि इनमें भार, आलंब और आयास की पोजीशन जो होती है, जो स्थिति होती है, वो भिन्न भिन्न होती है और इसीलिए इन्हें वर्गीकृत किया जाता है। यहाँ पर आप लोग आ जाओ पेज नंबर 99 पर। यहाँ पर आप लोगों को जो चार्ट दिया गया है ना, ये चार्ट आप लोग देखो, चित्र 11.9 में आप लोगों को चार्ट दिया गया है। इसमें आप लोगों को यही चार्ट बना देना है और आप आसानी से ये चार्ट बना करके ही थोड़ा थोड़ा एक्सप्लेन कर सकते हैं। नीचे पहले आप लोग लिख देंगे कि उत्तोलक जो होता है वो एक सरल मशीन होती है, और साथ ही में आप ये भी लिख देंगे कि इसमें तीन पार्ट्स होते हैं। कौन कौन से पार्ट्स होते हैं इसमें? एक भार होता है, आलंब होता है और आयास होता है। उसके बाद आप ये चार्ट बना देंगे कि प्रथम प्रकार के उत्तोलक होते हैं, द्वितीय प्रकार के उत्तोलक होते हैं और तृतीय प्रकार के उत्तोलक होते हैं। और प्रथम प्रकार के उत्तोलक में हमेशा आलंब जो होता है वो भार और आयास के बीच में होता है, द्वितीय प्रकार के उत्तोलक में हमेशा भार जो होता है वो आलंब और आयास के बीच में होता है और तृतीय प्रकार के उत्तोलक में आयास जो होता है वो आलंब और भार के बीच में होता है। तो इस तरीके से आप लोग तीनों के बारे में लिख सकते हैं और ये लिख सकते हैं कि कौन कौन सी पोजीशन होती है आलंब, भार और आयास की अलग अलग प्रकार के उत्तोलकों में। उसके बाद आप उदाहरण भी लिख सकते हैं, जो प्रथम प्रकार के उत्तोलक है उसके उदाहरण के रूप में आप लोग कैंची का नाम लिख सकते हैं या फिर हैंडपंप का नाम लिख सकते हैं, नेल कटर का नाम लिख सकते हैं। और द्वितीय प्रकार के उत्तोलक में आप लोग केरी कट्टा, सरोटा या फिर एक पहिया ठेला गाड़ी, इसमें से कुछ भी लिख सकते हैं। और तृतीय प्रकार के उत्तोलक में आप लोग हाथ से भार थामना या फिर चिमटी, इनमें से कुछ भी उदाहरण लिख सकते हैं। इसी तरीके से आपको इस प्रश्न का उत्तर करना है। और इसी के साथ में आपका अध्याय पूरा खत्म हो गया है। आपको अब क्या करना है, आपने पूरे अध्याय को एक बार खुद से पढ़ लेना है, कहीं पर भी आपको दिक्कत आए तो आपको अपने टीचर से जरूर पूछना है। तब तक के लिए बच्चों धन्यवाद।
सुनो किताब से सुनने के लिए आपका धन्यवाद।